कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
ओम शांति। भट्टी में पधारे आप सभी महान आत्माओं का बाबा के घर मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये आप सभी को एक्स्ट्रा माल मिल रहा है। हम भट्टी तो आप सबकी कल से शुरू होगी ऑफिशियल रूप से, लेकिन आए हैं तो एक्स्ट्रा खातरी हो रही है। तो आज की ये क्लास कुछ विशेष योग के प्रयोग या अनुभव, या फिर कहें कि जैसा कि गीत में सुना, अनेक समस्याओं में रहते हुए भी हम उनके प्रभाव से कैसे अपने आप को मुक्त रख सकें, तो ऐसी एक अचल और अडोल स्थिति हमारी बन जाए जो कि कोई भी परिस्थिति हमें हिला ना सके। आज की मुरली आप सबने सुनी होगी, संगम युग ब्राह्मणों के लिए क्या है? कल्याणकारी है। तो हर बात में कल्याण समाया हुआ है, इसलिए किसी भी बात परिस्थिति समस्या को आते देखकर हलचल में नहीं आना है, कोई प्रश्न नहीं उठाना है। और प्रश्न भी ये था मुरली का कि जिनकी अवस्था अच्छी होगी उनकी निशानी क्या होगी? वो कोई भी अफसोस नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो ठीक नहीं हुआ, नहीं। हर बात में अचल अडोल एक रस। तो ऐसी अचल अडोल स्थिति हमारी बन जाए, कोई परिस्थिति हमें हिला ना सके, तो उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? तो अभी से ही 3 अभ्यास, इस भट्टी को आपको सफल बनाना है तो अभी से ये 3 अभ्यास सब रोजाना की दिनचर्या में करके चले। आप क्लास सुनते सुनते भी कर सकते हैं, चलते फिरते, भोजन करते, मिलते, ये अभ्यास जरूर करें तो आपकी भट्टी को सफल करने में, योगी बनने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, जो भी सामने आए, ये भी आत्मा वो भी आत्मा, हो कम से कम 50 लोगों को, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते हो। क्या होगा इससे कि हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। इससे क्या होगा? आत्मा सहज इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान प्यारे बाबा की छत्र छाया के नीचे आ जाएगी, और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तीसरा अभ्यास, और ये भी शब्द हैं इस अशरीरी प्रैक्टिस के ऊपर बाबा के एक बच्चे, यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विद आनर बनाएगा, यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस। इसलिए इस अभ्यास में हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं। तो इसके ऊपर एक अनुभव, कैसे अशरीरी बनने की प्रैक्टिस सेफ्टी का साधन बनती है। एक भाई रात को दुकान बंद करके जा रहे थे 10 बजे। उस दिन उस रास्ते पर लाइट नहीं थी, अंधेरा था बहुत, तो किसी ने उनको बोला भी भाई इस रास्ते से आप ना जाकर दूसरे रास्ते से जाओ, नहीं तो कुछ भी घटना हो सकती है आपके साथ। तो कहने लगा कौन क्या करेगा, भगवान हमारे साथ है, इधर से जाएंगे, ऐसा कहकर चल पड़ा। जहां बहुत अंधेरा था वहां जाकर कुछ लोग झाड़ियों में छुपे हुए थे बैठकर, जैसे ही वहां होकर निकलने लगा तो उसको आवाज लगाई कि या तो आप अभी रुक जाओ नहीं तभी हम आपको खत्म कर देते। तो खड़ा हो गया, खड़ा हो गया, 5-6 लोग उसके आसपास आके खड़े हो गए, जो भी तुम्हारे पास है निकालो नहीं तो अभी हम आपको खत्म कर देते। तो उसने कहा कि आप लोगों को जो चाहिए सब ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो, ऐसा कहकर बिल्कुल देह से डिटैच न्यारा होकर और बाबा को याद कर यही योग लगा रहा है, बाबा बस अभी आ जाओ, आपकी मदद की आवश्यकता है। तो एक व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है, एक व्यक्ति उसके पास जो भी सामान पैसे घड़ी चैन अंगूठी वो सब निकाल रहा है, और 3-4 लोग उसके आसपास खड़े और वो बिल्कुल बिंदु बन के बाबा को याद कर रहा है। तो कैसे भगवान उसकी मदद करता है, एक वंडरफुल अनुभव है। तो जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ उसको ऐसा लगता है उसको कोई पकड़ कर ले जा रहा हो, तो जोर से चिल्लाता है मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, कोई पकड़ के ले जा रहा। बोल कौन पकड़ के ले जा रहा, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा। नहीं नहीं मेरे कोई पकड़ के ले जा रहा। अब जो पकड़ के ले जा रहा और दिखाई नहीं दे रहा तो कौन हो सकता है ऐसा? भूत आत्मा ही बिल्कुल, वो उसी को दिखाई देगा जिससे उसका हिसाब किताब होगा, बाकी किसी को नहीं है। तो ये सोचकर वो डर गए कि तो कहीं भूत तो नहीं, अगर भूत का हम कुछ ले गए तो वो तो घर भी पहुंच जाएगा, वहां भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए इससे बच के भागो। तो जोर से चिल्लाते भूत 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 और जो कुछ उससे लिया वहीं फेंक कर और भाग गए। तो देखो कैसे बाबा अपने बच्चों की रक्षा करता है। यदि हम बिंदु बन जाते हैं, शरीर बन जाते हैं, तो स्वतः उस सर्व शक्तिवान की छत्र छाया हमारे ऊपर आ जाती है और वहां बाबा आपको मौत के मुंह से भी निकाल कर बाहर ले आएगा। इसलिए इस अभ्यास में अपने आप को परफेक्ट बनाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। तो हम सभी का पुरुषार्थ जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। तो जो हमें अंत में बनना है उस अपने संपन्न स्वरूप को हम बार बार अपने सामने लाएं कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। तो ये तीनों अभ्यास आप रोजाना की दिनचर्या में बट्टी करते हुए करके चलेंगे तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी और एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे, लेकिन होगा करने से। और हलचल में लाने का कारण कौन सी बात बनती है? देह का भान। देह का भान को खत्म करने के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक सोमान मर्ज कर ले। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हूं। ऐसा सोमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो और उस सोमान का चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करो। तो सोमान से देहवान तो नष्ट होता ही है लेकिन देह अभिमान भी खत्म होता है और हमारे विचार महान बनते हैं। तो विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना सहज और सरल हो जाएगा। सोमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है, दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वह सोमान की सीट। तो और सोमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा आप कैसे भी अभिमानी आत्मा के अपमान को खत्म कर सकते हैं और एक नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। जो कार्य मुख्य बोल से नहीं हो पाता है वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक भाई ने जमीन के प्लाट के लिए सौदा किया था 20 लाख रुपए में। बातचीत होगी, सौदा फाइनल हो गया, कहा फलानी डेट को आना और पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। तो पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए तो बोले ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते। तो उसने 20 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेकर व्यक्ति बदल गया। आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे बराबर के दो प्लाट थे, बात हुई थी एक नंबर की, वो देना चाहता है दो नंबर। नहीं बोल, मुझे तो एक नंबर ही चाहिए। बोल एक नंबर नहीं मिलेगा, दो नंबर देंगे। तो बोल मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया, पांच दिन बाद गया, पंद्रह दिन बाद गया, महीना बाद। ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा। उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उसका फोन आया, भाई साहब मेरे सामने ऐसे से बड़ी समस्या आ गई है, मैं क्या करूं, को व्यक्ति पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा। तो हमने बताया उसे कि आप एक प्रयोग करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं। ऐसे रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि मेरे योग की शक्ति आत्मा को जाहिर से उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे में इनका योग करना, तो योग करना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं, ये मेरे योग की शक्ति, उस आत्मा को जाहिर से उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो कितनी बड़ी शक्ति एक बाबा द्वारा दी हुई सुमान। जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो सुमान के पावरफुल वाइब्रेशन से लेकर आया। तो आप में से भी किनों के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो प्रयोग करके देख सकते हैं। और हलचल में लाने का स्थिति को कारण क्या बनते हैं? हमारे मन के नेगेटिव विचार, होगा नहीं होगा, क्या करें कैसे करें, हलचल में आती है ना स्थिति। तो हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं। मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा करना ही है। बाबा ने हम सभी को वरदान दे दिया, बच्चे तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीत आत्मा, विजय तुम्हारी निश्चित है हुई पड़ी है। तो कभी नेगेटिव विचार अपने मन में लाना ही नहीं है, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चले। और बाबा ने तो कहा ही है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो ये भी हर एक अपने आप को पूछ लें कि मैं जो बनना करना चाहते हूं या चाहता हूं, क्या मैं वही सोचता हूं या सोचती हूं, या कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं। क्योंकि हमारे मन का एक एक संकल्प हमारे मन शरीर कार्यों पर वैसा ही प्रभाव डाल रहा है जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर जा रहे हैं, हमारे एक एक संकल्पों में वो शक्ति आती जा रही है सिद्ध होने की, वैसा बनने करने की। इसलिए ध्यान देकर चलने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। तो कैसे एक पॉजिटिव पावरफुल विचारों में वो शक्ति है असंभव को भी संभव करने की। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक भाई को कैंसर हो गया था और अंतिम स्टेज में पहुंच गया। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। उसने डॉक्टर की बात सुनकर यह संकल्प किया एक पॉजिटिव पावरफुल कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी और कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं। नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है? जैसा हम संकल्प कर रहे हैं वैसे सेल्स बनते जाते हैं, पुराने सेल्स खत्म होते जाते हैं। तो उसने जब ये संकल्प किया मुझे जिंदा रहना है, भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और कैंसर की बीमारी से मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और जो कैंसर बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए। क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स निकलते गए। और आज इस बात को लगभग 16 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। ताली बजाई, लेकिन सबने नहीं बजाई, जोर से नहीं बजाई। हाँ क्यों मैंने ये बात कही? इसके 2 कारण हैं। वैसे तो कोई कोई थोड़ा सा आप आए हैं आज की तो थोड़ा थके टूटे होंगे, इसलिए भी तो कईयों को क्लास सुनते सुनते थोड़ा सा सुस्ती आते आती है। तो जब ताली बजती है तो अलर्टनेस आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, सुस्ती भाग जाएगी। दूसरा फायदा क्या होगा? ताली बजती है तो हमारे शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं, तो पॉइंट दबने से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारी का इलाज होता रहेगा, तो अच्छा पुरुषार्थ और सेवा अच्छी कर सकेंगे। तो जहां जरूरत लगे आपको तो जरूर बजाए। अगली पॉइंट, हलचल में लाने का कारण स्थिति को बनते हैं हमारे मन के व्यर्थ के विचार। होगा नहीं होगा, क्या करें कैसे करें, मुझे इस कार्य में सफलता मिलेगी या ना मिलेगी है? तो व्यर्थ जहां है, और व्यर्थ में बहुत भाई बहनों का समय और शक्तियां वेस्ट चली जाती है और स्थिति साधारण हो जाती है। क्यों व्यर्थ के विचार चलते हैं? जब हम अपने आप को खाली फ्री छोड़ देते हैं, मन को कोई काम नहीं है, तो जरूर दूसरे विचारों का चिंतन चलेगा। तो जिनको पुरुषार्थ में आगे जाना, अचल अडोल स्थिति बनानी है, वो कभी अपने आप को फ्री नहीं छोड़े। कोई न कोई समान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन, स्टडी करके चलना, ज्ञान की, इन सब बातों में अपने आप को बिजी रखें तो वहां व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। इस संबंध में बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जब हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक अनुभव। एक भाई को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बाबा के बच्चे थे वो, तो पहली बार वो इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई मेरे मन में व्यर्थ के विचारों की हलचल है, पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से पूछा जाएगा इंटरव्यू में, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा गाइड करेंगे आप? तो उनको बताया कि आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है याद किया है वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफेद कपड़े पहनकर बैज लगा के जाना जो दूर से दिखाई दे। उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। गया तो जहां पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए तो दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देखकर वो कहते हैं, अच्छा ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। बोल फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोल हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोल हाँ जी। तो बस थोड़ा सा उसने आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। योग पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा, साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। ये इंटरव्यू हो रहा है देखो है। तो उसने गीत गा दिया। बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा, तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में 3-4 मिनट का ही गीत पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा, साहब अभी गीत पूरा हो गया तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, आप तो गीत गाना बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। तो ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल, शक्तिशाली विचारों की कमाल। इसलिए कहीं भी कोई कैसी परिस्थिति आए, कभी अपने मन में कमजोर व्यर्थ के नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें, तो निश्चित रूप से फिर जो आप सोचेंगे वही होगा। अब ऐसे अनुभव सुनने के बाद आप में से कईयों के सामने कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो सोचेंगे हम भी प्रयोग करें, जरूर करो। लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाकर फिर प्रयोग करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात, हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए, तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। बातें आएंगी लेकिन आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी। अगर इससे कम योग का चार्ट है तो वहां प्रभावित होने की मार्जिन है। तो एक अनुभव इस पर भी, एक सेवाधारी माता मेरे पास आई, हमारी यहाँ पांडवन के आंगन में ही सेवा है, दिन के समय सिक्योरिटी की, छोटे लाल भाई नाम है और मुझे यहाँ रहते 40 साल हो गए समर्पित होकर सेवा करते। तो माता आके बोलने लगी, भाई जी मेरी ये समस्या वो समस्या वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। तो उस दिन मैं कहीं बाहर जा रहा था बाबा की सेवा में मट्ठी कराने, तो मैंने माता जी को कहा, माता जी मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं बाबा की सेवा में, तो आप ऐसा करो तब तक 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो रोजाना 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। तो बोल ठीक है। मैं बाहर चला गया, माताजी योग करती रही 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते, और 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई तो पूछा, बोलो माताजी क्या समस्या है? तो माताजी कहती है, भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्या कहाँ है, क्यों ज्यादा है? जहां हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है वहीं ज्यादा समस्या है। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है। तीसरी बात, जैसी समस्या जैसी परिस्थिति वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। चौथी बात, हमारे मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी है। और 5वीं बात, पावरफुल स्थिति का होना जरूरी है। इन 5 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाएं फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हलचल में लाने का कारण अकेलापन, भय डर पैदा होता है ना व्यक्ति, मैं अकेली हूं अकेला हूं, कुछ हो गया तो क्या होगा। हम तो वहां बाबा ने कहा, बच्चे एक तो तुम अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहो और दूसरा सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। बाबा हर बच्चे का निरंतर साथी बनकर साथ निभा रहा है। हम ही उसको भूल जाते हैं लेकिन बाबा कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता है। तो ये स्मृति सदैव विमर्ज रूप में रखे चलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो, दो मिनट बाबा को याद कर कहो बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो रे कार्य करो। तो आप वह अनुभव करेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ निभाता है, ऐसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जहां सर्वशक्तिवान साथी बनकर साथ दे रहा हो तो वहां असंभव भी संभव होता चला जाएगा, सहज सफलता अनुभव करेंगे। एक अनुभव इस पर भी, मान लो आपको टीचर बहन ये बोल दे माता जी आपने ये सेवा करनी है, भाई जी आपने ये सेवा करनी है, और वो सेवा आपने कभी की नहीं हो, तो आप सोचेंगे ना मैं ये सेवा कैसे करूंगी या करूंगा है। लेकिन आपने बाबा की सेवा समझकर हां कर लिया तो फाइनल बात है कि बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा, क्यों कराने वाला तो वो है, आप हमको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करनी है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलना है तो कदम कदम पर सफलता मिलती रहेगी। एक अनुभव, हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, उस समय हमारे को कुछ जोरा भी दो शब्द भी किसी के आगे खड़े होकर बोलने का अभ्यास नहीं था। बताया ना मैंने 40 साल हुए, तो उस समय तो जो था मधुबनी था, ज्ञान सरोवर शांतिवन कुछ नहीं बना था, यहीं ओम शांतिवन में बाबा आते थे, सभी दादियां यहां रहती थी। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि जिन भाई बहनों पर क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो मेरे को कहा आपको भाषण करना है, हमने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया है, क्योंकि कभी बोला ही नहीं है तो कैसे भाषण करेंगे, और दादी ने कहा तो ना भी कैसे करें। तो मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, मैं कैसे भाषण करूंगा, और दादी ने बोला भाषण करना है। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही और बस थोड़ा शक्ति आ गई। हाँ मैंने कहा ये बात ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भाषण किया है और अब फिर से वही करना तो कौन सी बड़ी बात है, तो थोड़ा शक्ति आ गई। और बाबा को याद कर ये भी बता दिया बाबा यदि कुछ नहीं आए तो आप आना और आप भाषण कराना। प्रोग्राम ऐसा था टॉपिक किसी को बताए नहीं गए थे, कहा ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ और चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा प्रोग्राम था। उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो हैं वो नहीं कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। अभी तैयारी करे तो क्या करे, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग टॉपिक था, प्रोग्राम था, तो सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है, बाबा के सीजन के समय ये प्रोग्राम हो रहा था, तो बाबा से मिलने के लिए काफी भाई बहन आए हुए थे। तो और सब दादे दादियां आगे बैठे हैं और जिनको कुछ बोलना नहीं आता ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई सब नए नई, जिनको क्लास कराना भाषण करना नहीं आता था, ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट किया गया क्योंकि उनको सिखाना है। तो उनमें से एक हम भी थे, आप सोच सकते हैं कैसा सीन होगा। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, 4th नंबर हमारा आया, हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आई, दूसरी तरफ विचार चले कि इस पर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा सोचने का टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया, मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ, और ऐसा नहीं हो लोग हंसी उड़ाएं पहली बार स्टेज पाएं, भाषण अच्छा होना चाहिए। ये भी बाबा को याद कर कह के बोल दिया, और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आते गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए, उसमें 1st नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं जिसको 2 शब्द बोलना नहीं आता हो और इतना अच्छा भाषण कर जाए, 1st नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है, बाबा। तो उस दिन से एक निश्चय हो गया भले हमारे को कुछ आता हो या नहीं, लेकिन यदि हम भगवान को साथी बनाकर चलते हैं तो हमारे लिए सब कुछ सहज सरल और संभव होता चला जाएगा। और उस दिन के बाद हमारा क्लास कराने का भाषण करने का प्रोग्राम शुरू हो गया। बाबा ने एक कला भर दी और हलचल में लाने का कारण क्या बनता है, हमारे मन की नेगेटिव भावनाएं, दुर्भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावनाएं, तो इन सब से हम अपने आप को मुक्त बनाएं। बाबा ने हमको टाइटल दिया बच्चे तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी अर्थात जिसके मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रहती हो। ये तो हुआ ज्ञान। लेकिन एक व्यक्ति हमको हमारे से गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, विघन डालता है, तंग करता है, डिसरिगार्ड करता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती है या बदल जाती है? रहती है शुभ भावना ऐसी आत्मा के प्रति या बदल जाती? ज्यादातर लोगों से यही सुनने को मिलता है बदल जाती है। तो देखो अगर हमारे मन की भावनाएं बदल गई तो उस आत्मा के पास भी नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचेंगे और वो भी हमारे प्रति नेगेटिव भावना रख के चलेगी, तो उसकी नेगेटिव भावना हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघन रूप बनेंगे। इसलिए कोई कैसा व्यवहार क्यों नहीं करे, लेकिन हम अपने मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रख के चलते हैं तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि उस आधार से आप कैसे भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन सदैव हमारे मन में सर्व के प्रति शुभ भावना रहे उसके लिए दो बातों का होना जरूरी है, ज्ञान और योग का बल निरंतर इमर्ज रूप में रहना चाहिए, तभी भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याण की रहेंगी, अन्यथा ज्यादातर लोगों की भावनाएं गलत व्यवहार को देखकर बदल ही जाती है। तो कैसे एक शुभ भावनाओं के प्रयोग से आप नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते और विरोध करते होंगे, कई ऐसे भाई हो सकते हैं जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, वो रुकावट डालती है, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है, तो ऐसी आत्मा के मन के विचारों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, सुनिए यह प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई थे, बाबा के ज्ञान में चलते थे, उनका बड़ा बिजनेस था, उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी और बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है, इतना विरोध करती थी। लेकिन वो बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना पड़ता था तो बाबा के घर भी सेंटर क्लास करके आ जाते थे। तो एक बार वो भाई मधुवन आए बाबा से मिलने के लिए, एक रात ऊपर ही पांडवन में रुकने के लिए आए और क्लास के बाद हमारे से मिले और उन्होंने यही प्रश्न किया, भाई साहब मेरी युगल बहुत विघन डालती है, मैं क्या करूं, ज्ञान में चलने से रोकती है। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करिए, यदि आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, तो आज से ही दो बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। पहली बात, एक तो चाहे आपसे वो कैसा व्यवहार करे, एक तो अपने मन में कंप्लीट उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलनी है। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्यों करना है, क्या करना है, वो मैं बतला रहा हूं। अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है, तो जिस आत्मा को भी हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुंचते हैं और उसका अंतर मन शांत और खाली होने के कारण उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेगा। और जब कोई बात आपने स्वीकार कर ली तो फिर आप वैसे करेंगे, ये है इसका विधि तरीका। इसलिए यह प्रयोग अमृत वेले ही करना। प्रयोग क्या करना है, कैसे करना है, जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो उसको अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो, अगर आप जानते हो तो, और नहीं जानते हो तो आत्मा के रूप में, बिंदु रूप में इमर्ज कर लो, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो, और लेकिन प्रयोग अमृत वेले ही करना है, किसी के लिए प्रयोग कर सकते हैं आप। तो और दूसरा प्रयोग क्या करना, कैसे करना है, जिस आत्मा को बदलना चाहते हो उसको अपने सामने लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे इस प्रकार से शुभ भावना के रूप में बातें करो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो, और वो बात भी उस समय बता देना जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे में इनका 7 दिन अमृत वेले योग में अपनी युगल को इमर्ज कर लाइट के रूप में उससे इस प्रकार से शुभ भावनाओं के बाबा से पावरफुल वाइब्रेशन से लेकर उसे देना। वो यहां से गए जाकर अमृत वेले उठ के अपने घर और अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में मर्ज कर उससे इसी प्रकार से बातें की उन्होंने कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो, और वो बात भी उस समय बता दी जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे उसने 2 दिन प्रयोग किया अमृत वेले योग में। 3रे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो उसने सोचा योग की भट्ठी तो योग की भट्ठी में तो जाना है, तो मैंने दो दिन तो प्रयोग किया ही, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूँ। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्टी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से भी कनों के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं और हलचल में लाने का कारण बनते हैं अपवित्रता। इसलिए पवित्रता में हम अपने आप को संपूर्ण बनाएं। हम सब पवित्र तो बने हैं लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए उसमें हर एक नंबर वार है। और दूसरी एक बात, अब वापस घर जाने का समय आया है इसलिए सब तरफ से बुद्धि निकालकर एक बाबा में लगाएं तो बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी बाबा के साथ। तो आवश्यकता है समय को देखते हुए सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर रख के चलने की। अगर आपकी बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी वैसी पॉइंट टचिंग लेकर वैसा करने में आप सफल हो सकेंगे। अगर आपकी बुद्धि की लाइन भगवान के साथ क्लियर नहीं है तो प्रश्न उठेगा फिर क्या करें, कैसे करें, ये करें वो करें। क्यों प्रश्न उठ रहा है? क्योंकि लाइन बुद्धि में अनेक प्रकार की बातें बुद्धि में भरा हुआ है, बिजी है अनेक प्रकार की बातों बुद्धि, इसलिए बाबा जो टचिंग दे रहा है उसे हम कैच नहीं कर पाते। तो वर्तमान में लाइन क्लियर रख के चलना, भविष्य को भी देखते हुए लाइन क्लियर रख के चलना बहुत बहुत जरूरी है, तभी सही समय पर सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल हो सकेंगे। तो लाइन क्लियर कैसे रहेगी? अगर आपके बाबा के साथ लाइन क्लियर है तो फाइनल बात है कि दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी। अभी हम 5-6 दिन पहले ही आया हूं, हम गए थे भुवनेश्वर कटक और पुरी भट्टी कराने की सेवा। तो एक दिन वहां 3 सेंटरों पर प्रोग्राम थे क्लासेज, तो उस रास्ते में एक से दूसरे दूसरे तीसरे सेंटर पर जाने थे तो 4 रेलवे क्रॉसिंग पड़ते थे वहां। तो वहां पर और पहले रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे, फाटक बंद मिला, बाबा से कनेक्शन जोड़ा, बाबा थोड़ा देरी हो रही है क्लास के लिए भी, अब ट्रेन को जल्दी भेजो ताकि हम जाएं। तो याद कर कहा 1 मिनट में सीटी बजी, ट्रेन आ गई और फाटक खुल गए, चल पड़े। ऐसे ही दूसरी जगह गए वहां फाटक खुला ही मिला, तीसरी जगह गए वहां फाटक खुला मिला, चौथी जगह गए वहां फाटक बंद मिला, वहां भी बाबा को याद कर कहा 1 मिनट में ट्रेन आई और खुल गए बस। तो उसके साथ हमारी लाइन क्लियर है तो फाइनल बात है दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी, कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आवश्यकता है हम अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे। तो एक तो मैंने बताया सब प्रकार के विस्तार को समेट कर सार स्वरूप बन जाएं और दूसरा पवित्रता में संपूर्ण बने तो बुद्धि की लाइन क्लियर रहे। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता? उसके लिए अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने 7 बातें बताई है। उन 7 बातों को हम अपनी बुद्धि में रखकर अपने जीवन की धारणा में लाकर चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है। पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता, खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सब प्रकार की यदि स्वच्छता है, सफाई है, तो उससे बुद्धि की पवित्रता को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना, मनसा वाचा कर्मना, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ही ब्रह्माचारी कहा जाता है। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एकव्रता, एकव्रता अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमारी कहां तक बनी है वो हर एक चेक कर ले, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। चौथा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एक साकार मूल्य, बाबा ने बात बताई अमृत वेले से रात्रि तक, अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा, वो भी हर एक चेक कर ले अपने आप को। पांचवा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी है पवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चले। छठा स्वरूप बाबा ने कहा संकल्प संपूर्ण निर्विकारिता, छठा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, संपूर्ण निर्विकारिता अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। सातवां स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का बावन का संकल्प अथवा स्वपन में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इन सातों बातों को सामने रखते हर एक अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहेगी, और जहां लाइन क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे, तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, आपको ठहरना नहीं पड़ेगा। ऐसा ही एक अनुभव, एक बार हम नेपाल जा रहे थे भट्टी कराने बाई रोड, तो इंडिया बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना सेंटर था, उधर नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना सेंटर था, तो बीच में दोनों देशों का बॉर्डर पड़ता था। तो जैसे हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे तो उस दिन कुछ मिलिट्री वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था, ना किसी को जाने दे रहे थे ना आने दे रहे थे। हम भी पहुंचे तो हमारे को बोला वापस जाओ। अब वहां नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर जो अपना सेंटर है वहां भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं वापस जाओ, हमने बॉर्डर बंद किया हुआ है। तो एक बड़ी समस्या होगी ना, अभी क्या करें जी। तो मैंने वहां से थोड़ा सा अलग होकर और बाबा से कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी समस्या बताई, बाबा ऐसे ऐसे अभी हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यहां से 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, वहां भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं हमने बॉर्डर बंद किया हुआ है, वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तो अब मुझे क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूंगा। ऐसे सारी बात बता के मैंने बाबा को याद कर कहा। उसके 2 मिनट बाद बाबा से टचिंग मिली कि बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, उससे जाके बात करो। तो देखा तो मैंने, हाँ कोई बैठा तो है, मैंने कहा एक भाई और भी थे हमारे साथ वहीं के, तो उसको मैंने बोला भाई ये मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा है, उससे चल के बात करो। तो गए, दोनों को सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था, तो उसने कहा साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं, ये भाई हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर से आए हैं, और हमारा यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर हमारा सेंटर है, और इनके लिए वहां बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, तो 250-300 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हो, हाँ जी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, फिर तो जाइए। जो 2 मिनट के पहले ना हो गई, 2 मिनट के बाद ना हो गई। कैसे यहां हो गई 2 मिनट के बाद? बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया और वैसा करने में सफल हो गए। तो वर्तमान में भी राग आने वाले समय को देखते इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता पड़ेगी, सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर रख के चलना तो आप हलचल के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम एक स्लोगन याद रखें, कई जगह लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। कहीं कोई समस्या आती है सोचते ना अभी क्या करें कैसे करें, लेकिन ये सोचने के बजाय इस स्लोगन को याद रखें, हमारी जिम्मेवारी है बाबा को याद कर बता देना बस, बाकी सब काम वो करेगा। और मेरा अनुभव यह है भगवान सोचने का काम भी हमारे लिए करता है। तो सुनिए कैसा ही अनुभव। एक जगह हम भट्टी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्टी थी, तीसरे दिन उन्हीं के कनेक्शन में अलग अलग जगह एक एक दिन की 3 जगह भट्टी थी। तो एक ही दिन की भट्टी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था, काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की कमी हो रही थी। 4थे दिन वहां की बहन जी ने एक 4थे सेंटर पर मॉर्निंग क्लास कराने के लिए भेज दिया। जब 4थे सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बहन जी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके और 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना। अब मेरे को तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था और बहन जी ने आगे का और प्रोग्राम दे दिया। तो मैंने बहन जी को कुछ नहीं बोला, बहन जी की बात सुन ली और मैं बाबा को याद कर कहने लगा बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है, और बहन जी ने प्रोग्राम दिया क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना, तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना। मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना, सेवा कराने वाले तो आप हो। ऐसे मैंने बाबा को याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है, क्लास पूरा किया नाश्ता किया और बाबा ने बहन जी की बुद्धि को टच किया और बहन जी आके कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह वाह। इसका मतलब हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे एक भगवान मुझे देख रहा है, देख तो रहा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे लिए क्या सोचता होगा वो हर एक अपने आप से पूछ ले। लास्ट में एक छोटी सी बात हलचल में जो लाती है, अभी भी मैं देख रहा हूं। खैर आज तो आप लोग आए इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा ज्यादा, लेकिन आगे आपको एक काम आएगी बहुत, और बहुतों की ये समस्या होती है। अभी दो तीन दिन पहले भी हमने यहां क्लास कराया तो तीन चार माताओं के मन में यही था, वो बाबा कमरे में चिटकी लिख के देख के आई, बाबा मेरे को क्लास में योग में नींद बहुत आती है, इससे कोई मुक्त होने की विधि बताओ। तो एक छोटी सी ये बात कि कईयों को क्लास में या योग करते करते नींद आ जाती है, तो ये भी तो एक विघन है ना, हलचल मिलाने का कारण बनती है। चाहता कोई नहीं क्लास में योग में नींद आए, लेकिन आ जाती है। तो उससे मुक्त होने की कुछ एक बातें हैं। एक तो हम दिन में एक डेढ़ घंटा रेस्ट जरूर कर लें, अगर रेस्ट नहीं हो पाता हो किसी कारण से तो रात को थोड़ा जल्दी सो जाएं, टाइम पर सो जाएं, रात का भोजन हमारा हल्का हो और कम से टाइम पर कर लें। और अधिक नींद आने का कारण एक ही बनता है कि जिनका ब्लड प्रेशर धीमी गति का है, लो ब्लड प्रेशर रहता है, उसके कारण भी ज्यादा नींद आती है, तो उसका इलाज कराएं। और एक अधिक नींद आने का कारण कि जिनका पेट साफ नहीं रहता है तो सुस्ती बनी रहती है, उसके कारण भी जितनी नींद ज्यादा आती है तो पेट क्लीन रखें। ये सब कुछ करने के बाद भी फिर अगर आपको सुस्ती आती हो तो फिर इन बातों का आप प्रयोग करके देखना। जब हम 5-6 घंटे नींद करके उठते हैं तो हमारी आंखें 5-6 घंटे बंद रहती हैं, योग में वैसे खोल के बैठना चाहते हैं, आंखों को आदत पड़ी है बंद रहने की, तो ऐसे खुलती तो है, योग करते 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 कब झुटका आ जाता है फिर पता ही नहीं चलता योग कर रहे हैं या नींद कर रहे हैं। कोई पीछे वाला हाथ लगाएगा, नहीं नहीं हम यहीं थे योग कर रहे, तो भाई क्या अनुभव किया, कहते बहुत शांति मिली है। तो नींद से भी तो शांति मिलती है ना, आत्मा शरीर को रेस्ट मिलता है। तो क्या करो उस समय कि जब हम सुबह उठते हैं हाथ मुंह धुलाई करते हैं ना, तो मुंह में पानी भरते हैं, तो मुंह में जब पानी भरें हाथ मुंह धुलाई करते समय, उस समय पानी भर के मुंह की ऐसे एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा, हमारी पलकों की नसों का कनेक्शन मुंह के साथ है, जब मुंह में पानी भर के इस तरह से मुंह की एक्सरसाइज करेंगे तो पलकों की नसों की भी एक्सरसाइज होगी, और जो नशे यहां आकर सुकड़ गई हैं वो एक्सरसाइज से धीरे 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 खुलकर वो अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएंगी, तो जल्दी से आंखें बंद नहीं होंगी। एक बात। दूसरी बात, जब हम 5-6 घंटे नींद करके उठते हैं तो हमारा ब्रेन सुस्ती आलस्य के प्रभाव में होता है, तो आप कोई चाय पानी पी लेते हैं, हाथ मुंह धुलाई कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं, उससे काफी सुस्ती कम होती है, लेकिन फिर भी सुस्ती का प्रभाव रहता है। तो और सुस्ती को खत्म करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, हमारे माइंड की सभी नसें गर्दन के द्वारा शरीर से जुड़ी हुई हैं, तो योग में जाने से पहले या क्लास में आने से पहले थोड़ा सा गर्दन की इस तरह से एक्सरसाइज कर ले, 3-4 बार यूं और 3-4 बार यूं, लेकिन करना धीरे धीरे, कहीं झटके से गर्दन घुमा दी तो कहेंगे भाई जी ने ऐसा कहा तो ऐसा हुआ, कोई तकलीफ होगी, नस वगैरह खिंच गई तो है, तो वो नहीं, आराम आराम से करें। तो इससे क्या होगा, जब हम गर्दन की नसों की एक्सरसाइज करेंगे तो माइंड की नसों की भी एक्सरसाइज होगी, और जो नसें नींद के कारण शांत सुन्न पड़ गई हैं उनमें एक्टिवनेस अलर्टनेस आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी। और अगली पॉइंट, सुस्ती से मुक्त होने के लिए, जैसे हमारे हाथ और पैरों में शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, ऐसे कान के अंदर भी शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और विशेषकर कान में नीचे के भाग में यह नींद का पॉइंट, ये पॉइंट भी और सारे पॉइंट भी दबा लें आप, क्योंकि ये ब्रेन के नजदीक है ना पॉइंट, तो पॉइंट दबाते ही तुरंत उसका ब्रेन पर इफेक्ट होगा। तो जो ब्रेन आपका सुस्ती आलस के प्रभाव में है वो पॉइंट दबाते ही तुरंत उसमें एक्टिवनेस चुस्ती अलर्टनेस आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी। और फिर कोई अच्छे समान का अभ्यास करते योग करेंगे तो आपका योग बहुत पावरफुल होगा। लास्ट पॉइंट, जिनको ये पता है कि मुझे योग में सुस्ती आती है, नींद आती है, क्लास में नींद आती है, तो कोई अचानक सुस्ती नहीं आ जाती है, सुस्ती आने से पहले थोड़ा सा ऐसे नशा सा चढ़ता है, अब वो लगेगा नींद का नशा चढ़ने लगा है, तो वो अपने साथ रुमाल जरूर रखें। तो जब आपको पता चलता है कि भाई नशा चढ़ने लगा है, तो उठाया रुमाल, हल्के हाथ से एक आंख पर घुमा लिया, दूसरी आंख पर घुमा लिया, पूरे चेहरे पर घुमा लिया, आधा मिनट में एकदम फ्रेश सुस्ती खत्म। इस तरह से इन कुछ एक बातों को आप प्रयोग करके देखो तो निद्रा देवी आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, और आप अपना कान इस तरह रोजाना पकड़ते रहेंगे तो माया आपका कान कभी नहीं पकड़ेगी। ओम शांति। अभी किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं जब तक साउंड वाला भाई आए। है किसी का कोई प्रश्न? बाकी तो आपको बहुत क्लासेज मिलेंगे। और भी एक अनुभव सुना देता हूं, तब तक आए भाई तो हैं। तो हम अपने सभी बोझ बाबा को अर्पित कर दें, क्योंकि बोझ के कारण आत्मा भारी हो जाती है ना, तो हलचल पैदा होती है। मैं चल पाऊंगी नहीं चल पाऊंगी, ज्ञान में ये समस्या वो समस्या। लेकिन बाबा ने याद कर कहा, बच्चे तुम सभी बोझ मुझे अर्पित कर दो और हल्के हो जाओ तो जीवन में हल्के होकर चलना उड़ना सहज और सरल हो जाएगा। इस पर एक अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए तो दो दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी, दो बहनें और एक माता गाड़ी में बिठा के हमको एक सेंटर पर क्लास कराने के लिए लेके जा रही थी। छोटा रास्ता था, सिंगल रोड। तो रास्ते में एक गांव पड़ा, जैसे गांव क्रॉस करने लगे तो दूसरी साइड से एक मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति आया, गाड़ी से टकरा गया। मैंने कहा बाबा इसको बचाना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसको तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसकी मोटरसाइकिल को थोड़ा नुकसान हुआ। तो बंद कर ली, दो मिनट बस। तो दो मोटरसाइकिल को नुकसान हुआ तो 15-20 लोग इकट्ठे हो गए, हंगामा करने लगे, हमारी गाड़ी की चाबी ले ली और ये है वो है, पैसे देकर जाओ। अब गलती किसी की भी हो लेकिन बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है। तो वो 20 लोग थे, हम 5 लोग ही थे। तो हमने कहा भाई ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं, आप दुकान पर चलिए आपकी मोटरसाइकिल ठीक करा देते हैं। तो बोल नहीं नहीं हमारे को तो पैसे ही चाहिए, और पैसे बहुत मांग रहे। ऐसे समझाते करते उनको आधा घंटा बीत गया, फिर भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। तो मैंने देखा कि बात कुछ बन रही नहीं रही है और ऐसे ही टाइम वेस्ट जा रहा है। तो वहां से थोड़ा सा अलग होकर और मैंने बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी समस्या बताई कि बाबा ऐसे ऐसे अभी हम भट्ठी कराने क्लास कराने जा रहे थे, रास्ते में ऐसे हुआ एक्सीडेंट और ये लोग यहां इतना हंगामा कर रहे हैं, कोई बात मान नहीं रहे। अब इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है वो आप जानते हो, तो मैंने कहा आप आओ और इस समस्या का समाधान कराओ। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर बता दिया। बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है, तो बस दो मिनट में है। अब बाबा तो किसी के थ्रू ही कराएगा ना समस्या का समाधान। तो जो माता हमारे साथ थी उसको टचिंग मिली, उसके अंदर फोर्स आया और वो सबके आगे आके बोलने लगी कि ये मेरी गाड़ी है, मैं आप लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगी, जिसको चलना है पुलिस थाने चलो और जो पुलिस फैसला करेगी वो होगा, और देखो इस व्यक्ति के मुंह से बदबू आ रही है, इसने शराब पी हो इसलिए हमें पैसा भी नहीं देंगे। अब ये प्लस पॉइंट मिली क्योंकि शराब पी के गाड़ी चलाना तो कानूनी अपराध है, अगर वो पुलिस में गए तो उनको अंदर करेगी पुलिस। तो ये सुनकर वो ठंडे पड़े और 5 मिनट के अंदर तो हमको कहने लगे भाई साहब हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जाइए। तो जो आधा घंटे से जिस समस्या का समाधान नहीं हो रहा था, 5 मिनट के अंदर बिना कुछ लिए दिए हम वहां से चल पड़े। ये है उस अलमाइटी बाबा की कमाल। इसलिए ज्ञान तो आप सब लोगों के पास है, योग भी आप सब करते हैं, लेकिन जब किसी के सामने कोई समस्या परिस्थिति आती है तो वहां कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है, प्रश्न उठता है क्या करें कैसे करें ये करें या वो करें। इसलिए मैंने हर बात के पीछे एक अनुभव सुनाया ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। तो इसलिए आप भी ज्ञान योग का प्रयोग कर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में चलेंगे तो सजा सफलता प्राप्त कर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति। चलिए अभी 2 मिनट योग करते हैं।